नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में अग्निकांड जैसी घटनाओं को रोकने और अग्नि सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर अंकुश लगाने के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। गुरुग्राम जिला प्रशासन ने सभी मॉल, व्यावसायिक भवनों, होटल, रेस्टोरेंट, शोरूम और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का फायर सेफ्टी ऑडिट कराने के निर्देश जारी किए। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और परिवहन मंत्री डॉ पंकज सिंह ने एक निजी ईवी टैक्सी कंपनी की गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया और केंद्रीय पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सचिवालय में एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में श्रीमती गुप्ता के कैबिनेट सहयोगी आशीष सूद, दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली पुलिस, दिल्ली अग्निशमन विभाग और दिल्ली विकास प्राधिकरण सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि आग लगने की घटनाओं, बिना मंजूरी के निर्माण, आग से सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन और लोगों की जान खतरे में डालने वाले दूसरे मामलों में संबंधित विभागों के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए जिनके तहत दोषी पाए गए अधिकारियों के वेतन, पेंशन या संपत्ति से सरकार को हुए नुकसान की भरपाई की जा सके। गुरुग्राम जिला प्रशासन ने जिले के सभी मॉल, व्यावसायिक भवनों, होटल, रेस्टोरेंट, शोरूम और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का फायर सेफ्टी ऑडिट कराने के निर्देश जारी किए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में गुरुग्राम के जिला सूचना और जनसंपर्क अधिकारी के अनुसार गुरुग्राम जिला उपायुक्त उत्तम सिंह ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। एक रिपोर्ट।
DIPRO के अनुसार किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए सभी संस्थानों में निर्धारित अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। फायर सेफ्टी ऑडिट के दौरान अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता की जांच, आपातकालीन निकास व्यवस्था का निरीक्षण और फायर अलार्म सिस्टम तथा सुरक्षा प्रावधानों का सत्यापन किया जाएगा। DIPRO ने बताया कि नियमों का उल्लंघन मिलने पर नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम जिला प्रशासन ने सभी प्रतिष्ठान संचालकों से अपील की है कि वे अपने संस्थानों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखें और निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करें। सकलेन की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
दक्षिण दिल्ली के ग्रेटर कैलाश वन स्थित एक निजी कंपनी के कार्यालय में आज तड़के आग लग गई। दिल्ली अग्निशमन विभाग के अनुसार घटना की सूचना सुबह 2:47 पर प्राप्त हुई। आग बुझाने के लिए दमकल विभाग ने मौके पर 11 गाड़ियां भेजी और सुबह लगभग 7 तक आग पूरी तरह बुझा दी गई। इस दौरान 2 दमकल कर्मियों को हल्की चोटें आईं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और परिवहन मंत्री डॉ पंकज सिंह ने आज एक निजी ईवी टैक्सी कंपनी की गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में श्री सिरसा ने कहा कि दिल्ली में इस कंपनी की 1000 ईवी टैक्सी से सेवाओं की शुरुआत हुई है और अगले एक वर्ष में दिल्ली NCR में इनकी संख्या 10,000 तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर रेलवे के तिलक ब्रिज से शकूर बस्ती रेल सेक्शन का व्यापक निरीक्षण किया। उन्होंने उत्तर रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर क्षेत्र की विभिन्न विकास योजनाओं और प्रगति कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान श्री वैष्णव ने शकूर बस्ती डिपो में कार्यरत कर्मचारियों, मेंटेनेंस स्टाफ और अन्य रेल कर्मियों से संवाद भी किया। उत्तर रेलवे ने बताया कि श्री वैष्णव ने मौके पर मौजूद वरिष्ठ रेल अधिकारियों को उनकी समस्याओं पर गंभीरता से गौर करने तथा उनके त्वरित और समयबद्ध निवारण के लिए कड़े प्रशासनिक आदेश जारी किए। दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश साहिब सिंह ने आज राजधानी के जखीरा अंडरपास का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग और जल बोर्ड के अधिकारी उन सभी जलभराव के पॉइंट पर लगातार काम कर रहे हैं जहां पिछले वर्ष मॉनसून के दौरान जलभराव हुआ था। उन्होंने कहा कि सरकार आने वाले मॉनसून को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है और लोगों को बारिश के दौरान कोई भी असुविधा न हो इसके लिए निरंतर प्रयासरत है।
दिल्ली में पिछली बारिश में जहां जहां हमको वाटर लॉगिंग के पॉइंट्स मिले, हमारे पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, जल बोर्ड के अधिकारी निरंतर हर पॉइंट पर जाकर देख रहे हैं। सारी व्यवस्था अभी से हो चुकी है, हमारे सारे पंप स्टेशन, सारे अधिकारी और वो एकदम से मुस्तैद हैं।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने उसके पोस्ट रिजल्ट सर्विसेज पोर्टल पर किए गए साइबर हमलों के बारे में दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज की है। बोर्ड ने बताया कि यह पोर्टल इस महीने की 2 तारीख को शुरू किया गया था, जिस पर पिछले 3 दिनों में बार बार सुनियोजित साइबर हमले किए गए। एक रिपोर्ट।
सीबीएसई के अनुसार इन हमलों की प्रकृति, पैमाने और सुनियोजित तरीके को देखते हुए उसने विस्तृत जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई के लिए ये शिकायत दर्ज की है। सीबीएसई ने इस बात पर बल दिया है कि इन प्रयासों के बावजूद उसके सिस्टम और डेटाबेस पूरी तरह सुरक्षित हैं और उनसे कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। बोर्ड ने बताया कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर और केंद्र सरकार की अन्य एजेंसियों की साइबर सुरक्षा टीम के सहयोग से लगातार निगरानी और प्रतिक्रिया तंत्र के माध्यम से इन हमलों को सफलतापूर्वक रोक लिया गया। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद शिकायत निवारण के लिए 70,000 से अधिक विद्यार्थियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें अंकों के सत्यापन के लिए 7,300, 14 आवेदन और पुनर्मूल्यांकन के लिए 63,000 से अधिक आवेदन मिले हैं। बोर्ड ने मंगलवार को उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में कमियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला था। 13 मई को 12वीं के परिणाम घोषित होने के बाद कुछ विद्यार्थियों ने प्राप्त अंकों से असंतोष व्यक्त किया था और ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के अंतर्गत मूल्यांकन की सटीकता पर सवाल उठाए थे। इसके बाद शिक्षा मंत्रालय ने इस प्रणाली के कार्यान्वयन और खरीद संबंधी पहलुओं की समीक्षा शुरू की। जवाबदेही और विश्वास निर्माण उपायों के अंतर्गत बोर्ड के अध्यक्ष राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता का तबादला कर दिया गया और प्रशांत लोखंडे को नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। शिक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि जेईई एडवांस परीक्षा देने वाले छात्रों के डेटा लीक और निजता उल्लंघन के संबंध में कई भ्रामक और तथ्यात्मक रूप से गलत खबरें सामने आई हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने स्पष्टीकरण जारी किया है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित जानकारी भ्रामक है और गलत सूचना फैलाने का प्रयास है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि जेईई एडवांस्ड परीक्षा के दौरान कोई भी संवेदनशील जानकारी लीक नहीं हुई है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत बनाए रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो रेट को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया, जबकि नीतिगत रेपो रेट को तटस्थ रखा गया है।
हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% और वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में 7.8% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था की अंतर्निहित मजबूती, सुधारों की सफलता और 140 करोड़ भारतीयों के अथक परिश्रम को दर्शाती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों के जीवन को सुगम बनाने, व्यापार सुगमता लाने और युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने के हर संभव प्रयास करेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत कई पर्यावरणीय पहलों का शुभारंभ भी किया। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बनकर उभरा है। उन्होंने नागरिकों से न केवल पेड़ लगाने बल्कि उन्हें भावी पीढ़ियों के लिए पोषित और संरक्षित करने का भी आग्रह किया।
दिल्ली में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में धूलमुक्त दिल्ली के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ है। नमो पार्क को दिल्ली को समर्पित किया गया है। दिल्ली में जो लोकल वनस्पतियां और जो पेड़ हैं उसके लिए प्रदर्शनी लगाई गई है। मैं आप सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। एक पेड़ माँ के नाम पे जरूर लगाएं। आपके द्वारा ये किया गया कार्य पर्यावरण की दृष्टि से अच्छा होगा।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए हरियाली बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। उन्होंने घोषणा की कि दिल्ली सरकार ने इस वर्ष राजधानी में 15 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री ने पौधारोपण के बाद उनकी देखभाल और संरक्षण के लिए सामुदायिक भागीदारी के महत्व पर बल दिया।
15 लाख पेड़ इस साल लगाने हैं। सैपलिंग हम देंगे, जगह भी बताएंगे, पर पेड़ सब मिलकर के लगाएंगे। दिल्ली की हवा को साफ करने के लिए ऑक्सीजन पार्क पे काम शुरू हो गया है। हम लोग इस बार पॉल्यूशन रिलेटेड सभी मेजर्स पहले से ही ले लेंगे। हम ऑलरेडी दिल्ली की सभी सड़कों को वॉल टू वॉल कार्पेटिंग के लिए प्लान कर चुके। इससे सड़कों से धूल हटाने में मदद मिलेगी।
विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में डॉ मुरुगन ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने जल संरक्षण, वृक्षारोपण और वृक्षों की रक्षा तथा संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।
Observing that World Environmental Day, our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji.
हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से पर्यावरण की रक्षा और उसे बेहतर बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने हमेशा पर्यावरण के महत्व पर जोर दिया है और देश को इसके प्रति जागरूक किया है। हमें पानी बचाना है, पेड़ लगाने हैं और लगाए गए पेड़ों की देखभाल भी करनी है। पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित बनाए रखने के उद्देश्य से ही आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है।
एनवायरमेंटल डे, सो वी आर ऑल ऑब्जर्विंग दिस डे।
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज सभी को शुभकामनाएं दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने देशवासियों से पर्यावरण संरक्षण, सतत जीवन शैली और जैव विविधता की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करने का आग्रह किया। पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन अगले महीने की 31 तारीख तक खुले रहेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया है कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और अनुशंसाएं जो 15 मार्च से शुरू हुई हैं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी। और अब बात मौसम की। राजधानी में आज पूरे दिन धूप रहने के साथ साथ हल्के बादल भी छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में अग्निकांड जैसी घटनाओं को रोकने और अग्नि सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर अंकुश लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। गुरुग्राम जिला प्रशासन ने सभी मॉल, व्यावसायिक भवनों, होटल, रेस्टोरेंट, शोरूम और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का फायर सेफ्टी ऑडिट कराने के निर्देश जारी किए। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और परिवहन मंत्री डॉ पंकज सिंह ने एक निजी ईवी टैक्सी कंपनी की गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।